कोई कर्म होता है सुख या दुख भोगने का, तो इसी से देवताओं के मुख से निकलता है। देव मृत्या जब प्रोक्तम पूर्व दिष्टम तस्य तथ्य, पूर्व दिष्टम पहले के कर्म फल निर्धारित होते हैं, यही किसी के द्वारा इस जगत में मिलते हैं। चित्रकेतु महाराज को कहने का आशा है कि कोई भी देवता मनुष्य किसी को कुछ दे नहीं सकता और न तो उसका कोई कुछ छीन सकता है। अपने कर्मों के अनुसार उसको कुछ प्राप्त हो जाता है या कोई कुछ वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, तो उसको कर्म के अनुसार जो वस्तु मिलने वाली होती है तो कोई न कोई निमित्त बन जाता है, बहाना मिल जाता है, उसको वस्तु मिल जाती है। इसी तरह जाने का सुयोग होता है तो कोई न कोई कारण बन जाता है, परंतु वो तो जाना ही होता है इसको। तो इसकी मुझे चिंता नहीं है, मैं आपके साथ को स्वीकार करता हूं। और वह भी मां का वरदान, अंबी का मां जब बोली है तो कुछ न कुछ मेरा हित ही होगा। फिर कहते हैं कि संसार चक्र तस्मिन जंतु अज्ञान में होता है, भ्रामी सुखम च दुखम च भूते सर्वत्र सर्वद। माता जी, इस संसार रूपी चक्र में फंसा हुआ जीव है, फिर तो अज्ञान से मोहित है, अज्ञान है, अपने स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं रहता है। तो जहां भी जाता है, भ्रमण करता रहता है या माया उसे घुमाती है, तो कहीं न कहीं जहां भी जाए वहां सुख और दुख भोगता रहता है। जो उसके कर्मानुसार दुख लिखा है वही भोगता है, सुख लिखा है वही भोगता है, जहां भी जाए। एक तो जीव भ्रमण करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाता रहता है, और सब सुखम दुखम भुगत सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र का अर्थ है कि सभी देश में सभी स्थान में कुछ सुख मिलता है उसे, कुछ दुख मिलता है, और सभी काल में भी, जाड़े में भी कुछ दुख मिलता है तो सुख मिलता है, गर्मी में सुख मिलता है दुख मिलता है। ये तो जो कर्मानुसार लिखा है वो मिलेगा। मैं आपको कारण नहीं मान रहा हूं कि आपने हमको दुख दिया, ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। नई आत्मा न परस्थापी करता सत सुख दुख है, न तो जीव अपने से कारण है सुख लाने में या दुख लाने में, और न तो कोई दूसरा उसको सुख देता है दुख देता है। न आत्मा न परस्थापी, न तो स्वयं दुख सुख देता है और न तो पर कोई दूसरा सुख दुख देता है, करता सत सुख दुख है, हो ही नहीं सकता। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य के मन में बात बसी हुई है कि वो हमको सुख दिया और वो हमको दुख दे दिया, हमको सुख दिया, हमको दुख दिया, लेकिन कोई काहे न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो मेरी यह धारणा नहीं है कि माता पार्वती ने मुझको असुर शरीर में भेज दिया, साप दे दिया। मैं जानता हूं कि आप देने में समर्थ नहीं है, आप नहीं किसी को कुछ दे पाएंगे, और न तो ये मेरी कोई क्रिया है, मैं तो चाहता नहीं था कि असुर शरीर में जाऊं। तो जीव अपने से भी कुछ नहीं कर पाता है, ना दूसरा उसके लिए सुख दुख करता है। कर्तारम मन्यते अप्राप्य, जो मूर्ख व्यक्ति है वही कर्ता मानता है, चाहे अपने को या दूसरे को, आत्मानं परमेवच। जो अज्ञानी लोग हैं वही अपने को कर्ता मानते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं भाई इतना बुद्धि लगाया, इतना मेहनत किया तब जा करके काम हुआ, लेकिन वही बुद्धि वही मेहनत दूसरे से फेल कर जाती है, ऐसा देखा जाता है। तो अज्ञ व्यक्ति अप्राज्ञ, जिसकी प्रज्ञा नहीं है, बुद्धिहीन है, वही अपमान परम वच कारण मानता, वही दूसरों को या अपने को कारण मानता। ये तो यह स्वीकार करके बोले कि यदि सुख दुख कुछ है तो उसमें भी कारण दूसरा नहीं है, दूसरे को दुख नहीं देता है और सुख नहीं देता है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सुख और दुख कुछ है ही नहीं, यह मिथ्या मन की धारणा मात्र है। गुणा प्रवाह तस्मिन कह सात को ननुग्रह, कह स्वर्ग नर कह को किम सुखम दुखम वा। गुणा प्रवाह तस्मिन, प्रकृति के गुणों का प्रवाह नदी की धारा की तरफ बह रहा है, बह रहा है। इसमें कोई जीव जन्म ले रहा है, स्वर्ग में जन्म ले चाहे नरक में जन्म ले। भगवान ठाकुर कहते हैं इस संसार सागर में कच्छा हाबू डू है, जीव डूब रहा है, डूब रहा नीचे जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, कभी स्वर्ग उठा कभी लड़के डूबाए, दंड जमे राजा जन्म नदी तो छुबाए। इसको ऐसे चैतन्य महापुरुष समझाते हैं, किसी दंड व्यक्ति को जो अपराध किया है उसको राजा के कर्मचारी ले जाते हैं, नदी में डुबाते हैं उसको मरने के, दंडित करने के, पानी में ले जाकर के जब डुबाते हैं उसका गला पकड़ करके पानी के भीतर डालते हैं, तो कहता है छोड़ दे छोड़, अब मर गया मर गया मर गया। वो थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लेते हैं जल के ऊपर और सांस उसे लेने की राहत मिलती, तो कहा था ओहो कितना सुख है, और फिर जाना है पानी के भीतर, थोड़े काल के लिए सांस लेने को मिली तो कहता है हाँ स्वर्ग, ये बहुत सुख है। इस संसार में सुख भी कुछ नहीं है, मन की जो अनुकूल वृत्ति होती है उसको अब सुख मान लेता है, मन वो सोचता हाँ ये ठीक है, इसको संकल्प कहते हैं, तो उसको तो मान लेता है सुख है, और मन की जो प्रतिकूल वृत्ति है इसका फंक्शन है जिसको विकल्प कहते हैं उसको अब दुख मान लेता है। दुख सुख है नहीं, केवल मन की धारणा है कि असुख है या दुख है। यदि यदि खूब गवेषणा के साथ विचार करके देखा जाए तो वास्तव में सुख दुख इस संसार में नहीं। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, पता नहीं कहां गया था, एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, सच्ची घटना है, तो वो देर करके चले थे, लेकिन आ करके रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, मधुम सिंह था, तो गाड़ी रुकी थी, तो दौड़ते हुए हाँकते हुए आए, एक घंटा दस मिनट गाड़ी लेट थी, तो ये लोग आ करके पकड़ लिए और कहा कितना बड़ा भाग गाड़ी मिल गई, ऐसे हो गए ऐसे हो गए। और प्लेटफॉर्म पर जो लोग थे पहले से गाड़ी जो लेट कर रही थी, तो वो लोग कहते थे अब तक तो हम मुगलसराय पहुंच गए होते, अब तक तो हम यहां चले गए होते, हमारा काम बिगड़ रहा है। गाड़ी तो एक रफ्तार से चल रही है लेकिन अब उसके द्वारा कोई लेट आया तो सुख मान रहा है, तो देखो आयो को धन्यवाद दे रहा होगा ड्राइवर को कि इसी तरह से चिरंजीवी रहो देर करके गाड़ी है। तो ये लोग धन्यवाद दे रहे थे और लोग गाली दे रहे थे ड्राइवर को, पूरे रेल विभाग को ही गाली दे रहे थे, क्या व्यवस्था है। घटना एक हो रही है लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव बनकर हो रहा है, एक में सुख की अनुभूति हो रही है और एक में दुख की अनुभूति हो रही है। तो यहां कोई सुख दुख है नहीं, गुण प्रवाह है, तस्वीर जो व्यक्ति नदी की धारा में बह रहा है तो उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, जब बह ही रहा है तो ऊपर बहे चाहे नीचे बहे वो तो जा ही रहा है, गुण प्रवाह है वो तस्वीर, क्या यहां पर सुख है, किसको कहे सुखी है, जो भी यहां पर राजा बना हो चाहे सम्राट बना हो, आखिर मां के गर्भ में ही जन्म लिया ना, नौ दस महीने गर्भ में रहना पड़ा, वो कौन सुख का स्थान था, और बुढ़ापा होती ही है, रोग होते ही है, चिंताएं होती ही है, क्या सुख है। और ऐसे विचार करके देखा जाए तो दुख भी नहीं है, आत्मा के लिए कोई यहां स्पेशल दुख नहीं है, जब जन्म मरण में पड़ा ही हुआ है तो इससे ज्यादा दुख क्या होगा, तो दुख भी नहीं है। तो कह गुण प्रवाह है तस्वीर, कह साप कह यू अनुग्रह, क्या यहां पर साप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर क्या नरक क्या सुख क्या दुख, कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मानता भी है कि सुख दुख है तो सुख दुख की सब सृष्टि तो भगवान किए है ना, भगवान करते हैं, एक है सृजति भूतानि, भगवान आत्मा है, भगवान अकेले सभी जीवों की सृष्टि करते हैं और जीवों के लिए घर द्वार कपड़ा जो कुछ भी है सुख या दुख सब वही सृष्टि करते हैं, कोई दूसरा दुख नहीं देता है, इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए। यदि दुख कोई दे भी रहा है तो भगवान दे रहे हैं, और प्रकारांतर से मानो इसका भी निरसन होगा, वास्तव में भगवान दुख सुख नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे देखा है तो भगवान ने इस जगत का निर्माण किया है, यहां दुख की व्यवस्था भी वही करते हैं। गर्मी के दिन में सूर्य के प्रकाश से कोटि कोटि कीड़े मर जाते हैं, ये देखिए हुई बात, तो उन कीड़े को कौन दुख दिया, इतनी गर्मी उगलते हैं सूर्य जो मर जाते हैं, जाड़ा के दिन में इतनी ठंडक पड़ती है कि उससे कितने जीव मर जाते हैं। तो कौन दुख दे रहा है, कौन सुख दे रहा है? लेकिन उसमें भी जाड़े के दिन में किसी किसी को सुख मिलता है और किसी किसी को दुख होता है। गर्मी में भी किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। गर्मी के दिन में ये आइसक्रीम बर्फ बेचने वाले को बहुत सुख मिलता है। अभी हमेशा ठंडा पड़े तो उनकी बिक्री नहीं होगी, तो उनके लिए तो ज्यादा दुखद रहा नहीं, सुखद हो गया। एक बार मैं दिल्ली गया था जाड़े के दिन में, दिसंबर जनवरी में, एक व्यक्ति कह रहे थे कि इस साल में बहुत स्वेटर मंगाया है लेकिन जाड़ा नहीं पड़ा इसलिए बिक्री ठीक से नहीं है। जाड़ा बिक्री ठीक से नहीं हुई, तब तक उसके बाद जाड़ा बहुत घोर प्रारंभ हो गया। तो इस बार बता रहे थोड़ा छात्रा में कि एक भी नहीं बचा, हमको और ऑर्डर देकर मंगाना पड़ा। तो मैंने कहा तो जाड़ा आपके लिए सबसे ज्यादा सुखद हो गया। तो इस तरह ऐसे वास्तव में कुछ सुख दुख नहीं है। भगवान सृष्टि करते हैं, ऐसा बंधन च मोक्षम च सुखम दुखम च निष्कलम। इन जीवों के सुख दुख बंधन मुक्ति की यही व्यवस्था करते हैं और स्वयं बंधन से परे रहते हैं, निष्कल हैं। तो यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भगवान सुख दुख की व्यवस्था करते हैं, सृष्टि करते हैं, तो किसी को धनी क्यों बनाए हैं, किसी को गरीब बनाए हैं? कोई बहुत अच्छा खा रहा है, पी रहा है, तो हम जाए घर बनाए, कोई एसी रूम में रह रहा है, कोई सूर्य के धूप में बैठा हुआ है, ऐसा क्यों किए? तो कहते हैं तथा कुत्त विसर्ग एसम सुखा दुखा होता होता है बंधा या मोक्षा अचमृत जन्मनी हूं शरीर नाम संस्कृत कल्पते। वास्तव में भगवान कारण नहीं है इसमें, जीवन का कर्म कारण है। कर्म को ही विसर्ग कहा जाता है। गीता में भगवान ने इस शब्द को कहा है, भूत भाव भव करो विसर्ग कर्म संगीता। जीवों को जन्म देने में, पालने में, उनके विनाश करने में विसर्ग कारण है। और विसर्ग का मतलब है कर्म संगीता, उसका कर्म। भगवान स्वतंत्र किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, उनका कोई स्पेशली प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान फेवर करके उसको धनी बना दिए हैं या सुंदर बना दिए हैं, विद्यावान बना दिए, नहीं। उसके कर्मों का फल भगवान दिए, भगवान निष्पक्ष है। और कोई दुखी है तो उसके प्रति भगवान रंज है, ऐसी बात नहीं। कहीं कहीं बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा गया है कि भगवान बहुत क्रोधित होता है ऐसे लोगों के प्रति, बहुत क्रोधित होता है। यह भी लिखा गया है भगवान न्यायी है, न्याय करता है, लेकिन कुछ लोगों के प्रति ये बहुत खौफ है, लगता है कि अपने धाम में भी सुख से नहीं है, खौफ है। लेकिन वास्तविक भगवान तो अपने घर में मुरली बजाता है, नाश्ता रहता है, क्यों खौफ होगा? भगवान तो आनंद में मग्न है। यहां भी आते हैं तो खौफ नहीं होते हैं, हंसते हुए सब मारते हैं दुष्टों को। कंस का केस पकड़ कर भगवान ने पटक दिया, मर गया। किसी को तमाचा मारा, किसी के मुख में हाथ डाल दिया, किसी के पैर से मारा, किसी के दांत उखाड़ लिए हाथी के, किसी का पैर पकड़ करके मारा, हंस रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण के हंसते हुए मुख को देख करके वहां के योद्धा शरीर त्यागते थे, ऐसा लिखा गया। नाना पार्थास्त्र पूता पद्मा पुरस्य, भगवान के सुंदर मुख को वीर लोग देखते थे मरते समय, और अर्जुन का बाण आता था उनके गले को काट देता था। उस समय भी भगवान हंसते थे, उस छवि को भीष्म पितामह देखे, बहुत भगवान व्यग्र नहीं थे, बहुत घबराए नहीं थे, हंसते रहते थे। और कुछ लोग भगवान के हंसते हुए चेहरा को देखकर चिढ़ जाते थे कि बाप रे, भी हंस ही रहा है, उसको कोई परेशानी है ही नहीं। तो भगवान वो है जो आनंद में है, किसी के प्रति खौफ नहीं है। इसमें लिखा गया है मस्तस्य कश्चित् दैत्य प्रतीत, भगवान का कोई प्रिय है और न तो उनका कोई प्रतिद्वंदी है, सबके प्रति उनकी समदृष्टि है। अब जिसका जैसे कर्म है उसके अनुसार वो फल भोगते हैं, कर्म ही कारण है, इसमें यह बात बताई जा रही। तो इसलिए सिद्धकृत महाराज कहता अथ प्रसादेन त्वं साप मोक्षाय भामिनी जन्मनसे असाधुक्तम मंतत क्षम्यतां सति। इसलिए माता जी मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, क्षमा मांग रहा हूं साप से मुक्त होने के लिए नहीं, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूं कि आप अपना वचन लौटा लीजिए, मुझे असुर जोनि में ना जाना पड़े, मैं इसके लिए क्षमा नहीं मांग रहा हूं। यद्यपि मैं बहुत अच्छी बात कहा हूं लेकिन आपको असाधु जैसा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। जन मन से असाधु, इस पर सिंधु स्वामी जी कहते हैं कि तुम असाधु मन से, परंतु मैं असाधु उत्तम, मैंने जो कहा है वो सही बात कहा है, आपको अटपटी बात लग गया, आपको दुख लग गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चित्रकेतु महाराज के कहने का आशय था कि मैं भगवान शिव पर आक्षेप नहीं किया माता जी, मैं इन पर आक्षेप करके जगत को एक शिक्षा देने का काम कर रहा था कि दूसरे लोग इस तरह स्त्रियों के साथ सभा में न बैठे, ये मैं शिक्षा दे रहा था। लेकिन जो भी हो, यदि हमारे मुख से बहुत गलत बात निकल गई तो इसके लिए आप क्षमा करें, तो अप्रिय बात असाधु, कभी कभी अच्छी बात भी व्यक्ति बोलता है लेकिन देश काल के अनुसार गलत हो जाती है। तो चित्रकेतु महाराज का आशय यही था कि भगवान शिव की सभा में ये चर्चा होगी कि ये क्यों अपने गोद में अपनी पत्नी को बैठाए हैं, तो यह संवाद संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगा। तो जो लोग इस तरह से उच्छृंखल स्त्री लंपट हैं वे लोग सुधर जाएंगे, और नहीं तो माता ये होगा क्या, सब लोग यही कहेंगे कि भगवान भी तो गोद में अपनी पत्नी को बैठा कर कथा कहते हैं, इसलिए हम भी जहां जाएंगे घूमेंगे ट्रेन में कार में सब जगह पत्नी को गोद में बैठाएंगे, हमको कोई क्या करेगा, सूर्यों के नहीं मना करते हो, लेकिन बाल जी उनको कोई सिखा नहीं जाए तो कह सकते हैं जब सूर्य ऐसा करते हैं तो महाजन जन कहता है सक्रम था, महाजन लोग जिस पंथ पर चले हैं वही पंथ है, वही रास्ता है, वही मार्ग है, तो हम भी ऐसा करेंगे। चित्रकेतु महाराज का आशय इतना ही था कि ये दूसरे लोग सीखें, भगवान शिव की नकल न करें। इसलिए कहते हैं जन मन से असाधु, यदि आप इसको असाधु मानते हैं, गलत मानते हैं, तो मुझे क्षमा करें। साप जो मुझे भोगना है वो तो भोगना है, होने वाला था, कोई चिंता उसको मुझे नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति प्रसाद गिरसो चित्र केतु अरिंदम जगाम से अभिमान पश्चित स्मय पुस्तव। इस तरह भगवान शिव को पार्वती जी को उन्होंने प्रसन्न किया, अंत में माता पार्वती प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और तब दोनों से विदा लेकर अपने विमान से दोनों को देखते देखते चित्रकेतु महाराज चले गए। अभी असुर जो नहीं जाएंगे, इतना असमर्थ व्यक्ति नहीं है, वचन होगा सत्य, लेकिन माता पार्वती ने शीघ्र या शब्द अशब्द का प्रयोग नहीं किया, तुरंत असुर हो जाए उन्होंने नहीं कहा, इसलिए चित्रकेतु महाराज की इच्छा पर निर्भर करता था। कोई टाइमिंग नहीं दिया माता पार्वती ने, इसीलिए वो अभी असुर नहीं हुए, विमान पर चढ़ करके चले गए। और भगवान शिव चकित थे, पार्वती माता बिल्कुल चकित हो गई कि नहीं बाप रे बाप, इतना बड़ा साप देने के बाद भी इसे थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ, बल्कि भगवान की कृपा देख रहा है, दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर रहा है। माता पार्वती बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा व्यक्ति तो हमने देखा नहीं महान, यह अवश्य भगवान का परम भक्त है, तब इस पर असर नहीं हो रहा है। तो चलेगा, जब वो चकित थे ततस्तु भगवान रुद्र रुद्राणी इदम अब्रवीत, तो भगवान शिव रुद्र ने देखा रुद्राणी को, ये चकित है, बहुत आश्चर्य में है। माता पार्वती जी को ये उम्मीद थी कि यह भी झगड़ा करेगा, यह भी कहेगा कि तुम भी पत्थर हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कह सकता था, लेकिन यह महानता है कि चित्रकेतु में थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। कोई सामने का व्यक्ति क्रोध में हो, गाली दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कोई सह जाए उसको, अपने अपमान से विचलित न हो, तो यही उस व्यक्ति की महानता है। वास्तव चित्रकेतु की महानता से माता पार्वती बिल्कुल चकित हो गई। तो भगवान शिव कहते हैं अद्रवित भगवान सिंह बोले, कहां बोले, देवर्षि दत्त सिद्धानंद पार्षदानंद च सिंहता। भगवान सिंह उस सभा में बोलने लगे जहां देव ऋषि दैत्य और सिद्ध लोग और भगवान सिंह के पार्षद मुंडेश्वर आदि बैठे थे सब लोग। जब किसी व्यक्ति से गलती हो जाए या अपनी पत्नी से कोई गलती हो गए तो वह व्यक्ति चाहेगा कि ये काम अपनी पत्नी को समझाएं कि तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन भगवान की महानता देखिए, उस सभा में ऋषि देवता और दैत्य प्रहलाद महाराज आदि बैठे थे, उनके सभा में और पार्षद आदि सब अपना भूत प्रेत सब वहां बैठे थे, क्लास सुन रहे थे शिव जी का, तो सबके सामने भगवान शिव ने कहना चालू कर दिया। एक प्रकार से पार्वती की गलती को बताना चालू किया और चित्रकेतु की महिमा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया, लेकिन पार्वती जी से चित्रकेतु की महिमा गाने लगे, बड़ाई करने लगे, तो यह भी गलती ही बखानने के समान है। बड़े लोग इस तरह से बोलते हैं, बड़े लोग बात से मारते हैं, लात से नहीं। और लात से मारने ये सब तो छोटे लोगों का काम होता है। तो भगवान शिव कहते हैं, दृष्टवत्य से सुश्रेणी हरेर अद्भुत कर्म महात्मन भृत्य भृत्या नाम निष्प्रहाणाम महात्मा नाम है सुश्रेणी। श्रेणी कमर को कहते हैं, पतली कमर वाली या बड़े नितंब वाली। हे सुश्रेणी, हे परम सुंदरी, तुमने भगवान विष्णु के भक्तों के भक्त की महिमा को देखा ना। चक्रवर्ती पाजेश पर कहते हैं सुश्रेणी पर कि तुम केवल सुंदर भर हो लेकिन चित्रकेतु जैसे बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, ये कहने का आशय। यदि डायरेक्ट कहते तो पार्वती जी तो जीवन भर के लिए नाम कर जाती ऐसे बोल रहा है, लेकिन सुश्रेणी कह रहे। उस समय संबोधन अगर ऐसे करते कि हे सुंदर बुद्धि वाली, हे सुप्रज्ञ, तो माना जाता कि वो प्रशंसा कर रहे हैं, तुमने जो किया अच्छा किया। लेकिन कह रहे सुश्रेणी, भरी सभा में बोल रहे हे सुंदरी, तुमने देखा ना महात्मन भृत्य भृत्यानंद, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण के भक्तों की महिमा देखा नहीं। ये चित्रकेतु नारद जी के दास हैं, अंगिरा जी के दास। तो नारद जी की महिमा तो छोड़ो कितनी बड़ी है, दूर की बात है, उनके दास की महिमा का देखा नहीं। निष्प्रहाणा महात्मना, भगवान के दासों के दास निष्प्रिय होते हैं, उनको स्वर्ग आदि की कोई लालसा नहीं होती है। क्या तुमने ये समझा कि विमान पर घूम रहे हैं तो बस यही उनकी लालसा है, इसी पोजिशन में बने रहे? नहीं, महात्मा है, भगवान हरि उनके हृदय में बसते हैं। नारायण करह सर्वे न कुतस्थ विद्यति स्वर्गापवर्ग नर के स्वति तुल्यार्थ दर्शन, यह बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। श्रील प्रभुपाद जी इसको प्रायः अपने लेक्चर में कोट करते थे। भगवान के भक्त, नारायण के भक्त कहीं भी किसी भी स्थिति में डरते नहीं, घबराते नहीं। स्वर्ग हो चाहे नरक हो या अपवर्ग हो, वे तुल्य प्रयोजन देखते हैं, तुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग में भी वही भगवान की भक्ति देखते हैं, नरक में देखते हैं, स्वर्ग में देखते हैं। उनकी भक्ति से मतलब है, स्वर्ग जाए तो हम नरक में जाए अथवा अपवर्ग, एक विष्णु ही उनके जीवन के सब कुछ होते हैं। न स्वर्ग के भोगों में फंसते हैं, नरक के दुख से घबराते हैं और न तो मुक्ति के लिए ललायत रहते हैं। तुल्यार्थ दर्शन उनके लिए स्वर्ग या नरक या मुक्ति तीनों एक समान है, अथवा तीनों जगह वो तुल्यार्थ दर्शन है। एक ही अपना प्रयोजन देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। जहां भी भगवान से प्रेम बढ़ने में सहायता हो, जहां भक्तों का समागम हो, वही वो देखते हैं। अगर नरक में भगवत भक्त का संग मिल रहा है तो वही उनके लिए ठीक है, या स्वर्ग में हो रहा है ठीक है, या अपवर्ग में, तुम लोग से देखते। इसीलिए कहीं किसी भी स्थिति से घबराते नहीं। देखा ना तुमने, एक उदाहरण देखा चित्रकेतु को कि वे आश्रम जोनी में जाने में थोड़े ही हिचके नहीं। तुमने तो उनको विष जैसा वाक्य दिया, लेकिन वह महापुरुष कितने सुंदर भगवान का गुण गाए तुम्हारे सामने में। पर भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान सब करते हैं, कोई किसी को सुख नहीं देता है, दुख देता है। उसके वचनों में अमृत झर रहा था और तुमने विष जैसा वचन बोला। इतने कारांतर से कहने का आशय यह था, इतना स्पष्ट भगवान नहीं बोल रहे हैं, देह नाम देह संजोगा द्वंद्वा निश्वर मिलया सुखम दुखम मृत्यु जन्म साप निग्रह। ये वचन प्राणियों को जब देह मिला है, देह नाम देह संजोगा, देहधारियों को जब देह का संजोग है, तो ईश्वर की लीला से उनको ये द्वंद्व प्राप्त होते ही रहते हैं। कभी सुख मिलते हैं, कभी दुख मिलते हैं, कभी जन्म, कभी मरण, कभी साप, कभी कृपा, वो तो होता ही रहता है। जहां तक किसी को देह मिला है तो देह को कभी सुखद वातावरण मिलेगा, कभी दुखद होगा, कोई कभी कृपा कर देगा, कोई डोनेशन दे देगा, कभी वो भी डोनेशन चुरा लेगा, तो कुछ करेगा तो होता ही रहता है। कभी मान मिलेगा, आइए आइए महात्मा जी बैठे, बहुत आपका दुर्लभ दर्शन है। कभी अपमान मिलेगा, अरे खाने के लिए गरुआ कपड़ा रंग कर चाहिए, यही बोलता रहेगा। जब तक देह है तब तक तो ईश्वर की लीला से, माया से, सुख दुख साप अनुग्रह और जन्म मरण इस तरह से होता रहता है। सुना मैं कैसा भक्त प्रवचन कर रहा था, बोल रहा था, उस विषम परिस्थिति में भी उसका मन कितना भगवान में लगा हुआ है। अच्छा, अभी लोग कृतः पुरुषे व्यर्थ हो गई आत्मा में गुण दोष विकल्पों से भेदे सर्वियत कृत। जैसे सपने में व्यक्ति अपने अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी वो कृतः पुरुषे अर्थ भेद हो जाता है। अर्थ भेद का अर्थ वस्तु भेद। सपने को देखता है तो सपना देखने वाले के मन के अलावा हमें और कुछ नहीं होता है, लेकिन वह आत्मा में अपने मन में ही अर्थ भेद को प्राप्त होता है। देखता है कि घर है, ये पशु है, ये सांप है, ये ऑफिस है, दुकान है, ये है वो है, सब मन ही बना हुआ है। अर्थ भेद इसको कहते हैं। ये अविवेक कृत है, अज्ञान से कल्पित होता है। जब वो सोया हुआ है तो उस समय सपना आता है, जागृत में सपना नहीं आता है, जागृत में मनोरथ आता है। ये विचार करके सोचने की बात है। जैसे सपना में उस व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं होता है, लेकिन सपना में वह हमारा शत्रु है, यह हमारा मित्र है, यह हमारा घर है, यह हमारा धन है, यह हमारी इज्जत है, दिखता है अपने आप। इसी तरह से संसार में कौन किसका है, क्या है, कौन सुख दुख देने वाला है, लेकिन मन में आदमी मान लिया है। अच्छा, और जैसे सजीव गुण दोष विकल्प भिदा हुआ, माला में जैसे भेद बुद्धि होती है, ये गुण दोष बुद्धि हो जाती है, ये भेद बुद्धि ऐसे कहते हैं। जैसे माला रखी हुई है, माला में कभी कभी किसी व्यक्ति को सर्प का भ्रम हो जाता है, है माला लेकिन उसमें सर्प बुद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति घबराता है, भागता है, घर के लोगों को बुलाता है कि सांप आ गया, सांप आ गया, लेकिन सांप नहीं है, माला है। और कभी कभी सर्प में माला बुद्धि हो जाती है, तो इस समय व्यक्ति बड़े प्रेम से माला सर्प को उठाकर गले में लगाना चाहता है, और तब तक सर्प फुफकार मार करके उसे डस देता है। तो माला में सर्प बुद्धि हो चाहे सर्प में माला बुद्धि हो, ये दोनों गलत। इसी तरह से मनुष्य मान लिया है मन में कि हमारा हितैषी है, ये हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, नरक हमारे लिए खराब है, स्वर्ग ठीक है, यह ठीक है, यह गलत है, लेकिन इससे उसका कोई वास्तविक हित नहीं होता है। तो संसार में जो संबंध हुए हैं उनको आदमी समझता है कि ये माला है, इनसे हमको सुख मिलेगी, ये हो सकता है कि वो सर्प उठा रहा है और वो सर्प उसे डसेगा, दुखी होगा। इस संसार में सबसे अधिक दुखी आदमी अपने परिवार के लोगों से रहता है, परंतु बुद्धि क्या है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, हमारे ये है, भले दुख दे चाहे कुछ भी। और दूसरे ये शत्रु बुद्धि हो जाती है, भले शत्रु से सुख मिल रहा हो, लेकिन फिर भी बुद्धि यही रहती है कि शत्रु है, शत्रु है, शत्रु। यदि किसी व्यक्ति के अत्याचार से कोई ईद करके 10 दिन वृंदावन चला जाए, तो यह व्यक्ति सोच सकता है अरे तो हमको घर से भगा दिया, इतनी दुष्टता किया, वह किया, वह किया। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो जिससे उब करके वृंदावन गया है वही उसका हितैषी वास्तविक लाभ की दृष्टि से देखा जाए। रामायण में कथा है कि बाली अपने भाई को सुग्रीव को घर से भगा दिया था, राज छीन लिया था, स्त्री को भी हड़प लिया था। तो सुग्रीव रहते थे वन में पर्वत में और भगवान श्रीराम की पत्नी को रावण हर लिया था। तो भगवान सीता को खोजते खोजते वन पहाड़ में सुग्रीव के पास पहुंच गए। तो सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर भगवान ने पूछा कि यहां क्यों रहते हो वन में। तो उसने कहा कि हमारे भाई बालू ने हमें मारा पीटा, हमारा धन छीन लिया, हमारी स्त्री छीन लिया, यहां पर नहीं आ सकता है, एक ऋषि का साफ है कि यहां आएगा तो मर जाएगा, इसलिए मैं यहां रह रहा हूं, वन में रह रहा हूं। अच्छा, तो मैं तो सुना दिया, आप बताइए आप क्यों वन में आए। भगवान ने ऐसे बाह रूप से कहा कि हमारा भी एक सौतेला भाई है भरत, उसकी मां ने उसके लिए राज्य मांग लिया और हमारे लिए वन मांग लिया। वन में आकर गुजारा करता था तब तक पता नहीं कोई हमारे स्त्री को ले गया। जौन तेर गति तौन मोर गति, जो तुम्हारी गति है वही मेरी गति है। उस समय सुग्रीव जी कहते हैं बाली परम हित जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा। इस संसार में सबसे बड़ा मेरा हित ऐसी है बाली, जिसने मुझे मारा तो मैं जंगल में आया, नहीं तो आप तो गांव में जाते ही नहीं है। भगवान श्रीराम का व्रत था, 14 साल तक उसी गांव में शहर में नहीं जाते थे, वन में तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं कि बाली बहुत कृपा किया कि मारपीट कर हमको जंगल में कर दिया, जिसे आपकी प्राप्ति हुई, आप मिले। तो संसार में इस तरह से सुख देने वाले लोगों में दुख देने वाली बुद्धि हो जाती है और दुख देने वाले में सुख बुद्धि हो जाती है। जो कुछ भी हो यह केवल मन का भ्रम है, भगवान शिव कहते हैं। और जो श्रीकृष्ण के भक्त हैं प्रिय, वे किसी के आश्रित नहीं होते हैं, किसी भी वस्तु परिस्थिति में फंसे हुए नहीं होते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति निर्भरता निर्णय ज्ञान वैराग्य विजयराम में है कश्चित व्यपास है। जो भगवान वासुदेव में खूब प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं और ज्ञान वैराग्य का जिनको बल है, वो लोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आश्रित नहीं होते, फंसे हुए नहीं होते। जिनको ज्ञान और वैराग्य का वीर है और भगवान की भक्ति है, तीनों है, न कश्चित व्यपास रहे, किसी भी स्थिति में बंधे हुए नहीं होते हैं। हमारे लिए यही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति मटीरियल है, प्राकृत है, प्राकृत है। जैसे सपना में चाहे अच्छा दृश्य हो चाहे बुरा हो, सब मिथ्या है। इस तरह से वो किसी भी स्थिति आदि में बंधे हुए नहीं होते। तो भगवान के भक्तों की ये कैसे महिमा हो जाती है, इतने बड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे हैं, भगवान महान है। इसलिए कोई भक्ति करता है तो भगवान के गुण उस भक्त में आ जाते हैं, इसलिए भगवान की महिमा गा रहे हैं। नाहू विरुंच न कुमार नारद न ब्रह्म पुत्र मुनय सुरेश दुदान जैसे हितमंश कांसका न तत्स्वरूपम पृथ्वी समान। भगवान की क्या इच्छा है प्रिय, कब क्या कराना चाहते हैं, न मैं जानता हूं न ब्रह्मा जी जानते हैं, न अहम न विरुंच न कुमार नारदव, न सनत कुमार जानते हैं न श्री नारद जी जानते हैं, और न तो ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र और न मुनि लोग न देवराज इंद्र आदि। जस इहितम अंश कांश का न स्वरूप पृथ्वी समानी, जिनके इहितम भगवान कब क्या करना चाहते हैं इसको हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुख से जब चित्रकेतु के विषय में निकला कि असुर हो जाओ, तो लगता है कि भगवान की कोई योजना है, भगवान का कोई प्लान है। क्योंकि वास्तव में माता पार्वती कोई साधारण महिला नहीं है कि ऐसे क्रोध में कुछ बोल, वो ईश्वर का अनुशासन काम करता है, तब बड़े लोगों के मुख से कोई बात निकलती है। इसी को भगवान शिव कह रहे हैं कि कोई ठीक नहीं है, हम लोग जानते नहीं भगवान क्या करना चाहते हैं, उनके अंशक अंश का जब भगवान के अंश के अंश के अंश से उत्पन्न हुए हैं तो वे लोग तो उनके स्वरूप को भी नहीं जानते हैं, इच्छा जानने की बात तो दूर है। हम लोग तो भगवान को जानते हैं, हम लोग भगवान के स्वरूप को जानते हैं कि ऐसे हैं, सांगले सलोने हैं, बांसुरी बजाते हैं, पीतांबर पहनते हैं, गाय चराते हैं, हम लोगों को तो पता है उनके स्वरूप का, लेकिन उनकी इच्छा का पता नहीं है। परंतु दूसरे जीवों को तो उनके स्वरूप तक का पता नहीं। देख रहे हैं संसार में लोगों को वास्तव में भगवान के स्वरूप का पता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ठीक ठीक भगवान को जानते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आपको पता है कि भगवान का क्या स्वरूप है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हमको बिल्कुल पता है, वेणु करम तमरबिंद बलायताक्षम बरहाय तंस मसिता मुदसिंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। शिल प्रभुपाद यही श्लोक बोलते हैं, हमको पता है भगवान के सिर पर मोर का पंख है, बांसुरी बजाते हैं, कमल के समान खिली हुई आंखें हैं, सांवले हैं, और कोटि कोटि कंदर्प से भी कामदेव से भी अधिक सुंदर ये भगवान का स्वरूप। तो इस तरह निर्विवाद भगवान का ज्ञान होना चाहिए। भगवान कोई अटकल के विषय नहीं है, हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। तो यहां पर भगवान शिव कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान की इच्छा को अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो भगवान के स्वरूप तक को नहीं समझ पाते हैं, और इस मामले में अपने को मालिक समझते हैं, ईश्वर मानते हैं, असमर्थ समझते हैं। तो भगवान का कोई प्रिय नहीं है, न तो उनका कोई अप्रिय है, न तो उनका कोई पर है, न स्व है। आत्मत्व सर्वभूता नाम सर्वभूत प्रिय हरि। वास्तव में भगवान सबके भीतर हैं, सबके आत्मा हैं, और इसीलिए सर्वभूत प्रिय हरि श्रीहरि कृष्ण सबके परम प्रिय है, सबके परम प्रिय। चित्रकेतु का बहुत बड़ा भाग्य है कि उसने पहचान लिया है कृष्ण हमारे परम प्रिय, इस तत्व को समझ गया है। तस्य चारण महाभागस् चित्रकेतु प्रिय लोग, उन्हीं भगवान का विष्णु का यह चित्रकेतु प्रिय है और अनुगामी। भगवान का यह प्रिय है और अनुगामी है। सर्वत्र संवृक शांत यम चौचित प्रिय, और सर्वत्र संबुद्धि रखता है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, और शांत रहता है, भोगों की लालसा नहीं रहती। और मैं भी भगवान का बहुत प्रिय हूं, अहम च अच्युत प्रिय। चित्रकेतु भगवान के प्रिय हैं और मैं भी प्रिय हूं, इसलिए चित्रकेतु महाराज पर मुझे क्रोध नहीं आया। चित्रकेतु भगवान के भक्त है, विनोद कर रहा था, कहने का आशय है, मैं भगवान का प्रिय हूं, ये भगवान के प्रिय है, या भगवान मेरे प्रिय हैं, उनके और चित्रकेतु के प्रिय भगवान हैं। तो इस तरह से इस काम से मेरा तो सख्य भाव है उसके साथ, चित्रकेतु के साथ। मैं तो सोच रहा था कि कुछ बोलूंगा तब तक तुमने बीच में ये काम बिगाड़ दिया। कम से कम स्त्री के पति के आगे चुप तो रहना चाहिए ना, कुछ करना होगा तो बोलेगा। कुछ ऐसे पति मिल जाते हैं जो पत्नी की बुद्धि से कम बुद्धि रखते हैं, तो उनको तो पत्नी का अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मिलते हैं। लेकिन सामान्यतः पति आगे होता है, प्रायशः, संस्कृत में प्रायशः शब्द है प्राय। तो भगवान शिव पार्वती जी के सामने चित्रकेतु की महिमा गा रहे हैं, प्रकारांतर से कहने का यही आशा है कि तुमने जो एक्शन लिया वो गलत किया, अन्यथा जिसको दंड दे रहे हैं उसी की महिमा भगवान गा रहे हैं। तो समझ नहीं गई होगी कि शिव जी का क्या आशय है, और कम से कम पार्वती जी का ये तो अनुभव होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया, ये तो अनुभव होना चाहिए। भले ईश्वर की इच्छा से हुआ चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस तरह से एक महान भक्त को असुर जोनी में डाल देना, और वह भी केवल बात बोलने के कारण, कोई प्रहार तो नहीं किए थे, कुछ नहीं, एक बात बोल दिए, क्या बिगड़ जाता है बात। और जो जैसा है वैसा ही रहता है ना, किसी को बात से अपने नीचा गिरा सकते हैं ना ऊंचा चढ़ा सकते हैं। यदि मान लीजिए गरुड़ जी जमीन पर बैठे हैं और उनको कोई कार्य इसमें उड़ने की शक्ति नहीं है, या लसी है उड़ नहीं सकता है इसलिए जमीन पर बैठा है, और कौवा मान लीजिए सुनहरी पर्वत पर बैठा है तो उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है, वाह रे वाह तुम्हारी उड़ान शक्ति कितनी है, ये है वो है, तो कौवा बहुत ऊंचा बैठ गया, ये ऊंचा है, गरुड़ जी नीचे हो गए, तो गरुड़ जी चाहे सुनहरी पर्वत पर बैठे चाहे समुद्र के तट पर बैठे, गरुड़ जी गरुड़ जी है, और ऊंचा नीचा आसन होने से क्या हो जाएगा। तो क्या सुनहरी पर्वत पर कौवा को बैठा देने पर गरुड़ जी हो जाएगा? एक घटना कहते हैं, एक बार एक पंडित जी गए थे, एक जगह कथा हो रही थी, तो उन्होंने संस्कृत में पढ़ लिया था पंडित जी ने, ऊंचा सनह सपंडित, जिसका ऊंचा आसन होता है वो पंडित होता है। उसका भाव यह था कि पंडित को ऊंचे आसन पर बैठना चाहिए, लेकिन वो ये अर्थ समझ रहा था कि जो ऊंचा बैठता है वही पंडित माना जाता है, ऊंचा सनह सपंडित। तो कथा हो रही थी, सब लोग नीचे बैठे थे, तो पंडित जी देखने लगे कि अब हम कहां बैठे, हम तो पंडित हैं, हम कहां बैठे। तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में गोबर का कंडा बनाया जाता है, और कंडा एक जगह डाल दिया जाता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो देखे कि यहां पर ऊंचा कोई आसन नहीं है, तो जा करके कंडा पर ऊपर बैठ गए। तो सब लोग चकित होकर देखने लगे पंडित को क्या हो गया, उधर क्यों बैठा है, तो पंडित जी उधर क्यों बैठे हैं, तो कहता ऊंचा स्नेह से पंडित है, जो ऊंचा पर बैठता है पंडित होता है। सब लोग हंसने लगे, अरे ऊंचा स्नेह से पंडित, तो वचन से कुछ हो नहीं जाता। मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति अगर ऊंचा आसन पर होगा तो बैठने से क्या होगा, और विद्वान पढ़ा लिखा किसी विद्या का जानकार यदि गोदाम में ही बैठे, अंडरग्राउंड ही बैठे, तभी तो वो विद्वान ही है। तो इस तरह से मान लीजिए सभा में यदि चित्रकेतु महाराज ने कुछ कह दिया, तो इसे भगवान शिव की महिमा में तो कोई खरोच लगा नहीं, ऋषि लोग जो के तो बैठे ही रहे, अगर वहां दो चार भी उठ कर गए होते कि चित्रकेतु ठीक कह रहा है, इनकी आदत ठीक नहीं है, ऐसे स्त्री के साथ बैठते, महिमा रह ही गई, तो बोलने से क्या होता है। पर इसी पर माता पार्वती ने ऐसा दुरत्य दंड दिया, असुर बनाया, अंततः भगवान की इच्छा थी, तो चित्रकेतु भगवान के अनुगामी है, ये है तस्मय कार्य पुरुषेषु महात्मसु, इसलिए विस्मय मत करो, भगवान के भक्तों में जो शांत होते हैं, संदर्शी होते हैं, महापुरुष के भक्त होते हैं, उनमें कभी भी आश्चर्य मत करो, कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह से क्रोध को जीता हुआ व्यक्ति तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, देखने की बात तो दूर है, पर आश्चर्य मत करो, ऐसे भगवान के भक्ति का प्रभाव है। भगवान शिव कह रहे हैं जो भक्ति करते हैं उसमें इसी तरह की महानुभावता आती है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति श्रुत्वा भगवत स्वस्य न विभाषितम बभूय शांत धीराजन देवी विगत विस्मय। तो भगवान शिव की बात को सुन करके तब पार्वती जी शांत हो गई, बभूय शांत धी, एकदम बुद्धि शांत हो गई, क्रोध समाप्त हो गया, और विस्मय भी जो आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा व्यक्ति कैसे है, वो भी शांत हो गया, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। अब देखिए महानता कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज चित्रकेतु की, इति भागवतो विद्या प्रतिशक्ति अलंतम निर्भय संजग्रह शापम ए पावत साधु लक्षण। ये कमेंट दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पार्वती जी को देवी को शाप देने में चित्रकेतु महाराज अलंतम समर्थतम थे, पूरे पूरे समर्थ थे, कुछ भी साप दे सकते थे, लेकिन निर्भय संजग्रह शापम, साप को स्वीकार किए, साप दिए नहीं, एक शब्द भी कुछ नहीं बोले, एतावत साधु लक्षण, यही साधु का लक्षण। अब तो सुखदेव गोस्वामी एक तरफ पार्वती जी को, एक तरफ उनको रख दिए, बताओ चित्रकेतु ये साधु है, इसको साधु कहते, एतावत साधु लक्षण, इतना बड़ा घोर साप सुनने के बाद भी मन में क्रोध नहीं हुआ, प्रतिशोध की भावना नहीं हुई, शांति से सह लिए भगवान का वरदान मानकर। पत्ते में कंपन सुसमीक्ष मंगल भूमि